This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Gaurandhavan Lal and with me is my co-anchor, Ambrish Saxena.
Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hum hamesha ki tarah desh aur duniya ki chuni hui aarthik, karobari aur shayar bazaar se sambandhit khabrein lekar hazir hain. Hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain varishth aarthik patrakar Prakash Chawla. Prakash ji, karyakram mein aapka swagat hai.
Namaskar.
आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं गौरांग धवन लाल.
थैंक यू अम्बरीश एंड मिस्टर चावला, वेलकम टू द प्रोग्राम.
वेलकम.
अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस. डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस स्नैप 3-डे लूजिंग स्ट्रीक टुडे अहेड ऑफ आरबीआई पॉलिसी आउटकम. कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल कॉल्स फॉर फास्टर नेगोशिएशंस ऑफ बिम्स्टेक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. आरबीआई एक्सटेंड्स interest subvention scheme for agricultural loans up to 3 lakh rupees, and crude oil prices rise over 1.5% amid high volatility.
आरबीआई नीति के नतीजों से पहले घरेलू शेयर बाजारों में तीन दिन से चली आ रही गिरावट का दौर आज थमा. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत में तेजी लाने का आह्वान किया. केंद्र सरकार ने संशोधित ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत किसानों को 3 लाख रुपए तक कृषि ऋण देने की योजना को आगे बढ़ाया और कच्चे तेल के मूल्यों में भारी उथल पुथल के बीच 1.5% से अधिक की तेजी दर्ज की गई. और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में तीन दिन से चली आ रही गिरावट का दौर आज थमा और सूचकांक 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए. बाजारों में दिन भर तेजी का रुख रहा और बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 875 अंक यानी 1.11% की बढ़त के साथ 79,468 अंकों पर बंद हुआ. निफ्टी भी 305 अंक यानी 1.27% बढ़कर 24,297 अंकों पर बंद हुआ. व्यापक बाजारों में भी मजबूती दिखाई दी. बम्बई शेयर बाजार के मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक दोनों में ही 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में तेजी दिखाई दी.
Domestic benchmark indices, the Sensex and Nifty, snapped a 3-day losing streak to trade over 1% higher during the session and ended on a strong note ahead of the RBI policy outcome. At close, the Sensex was up 875 points or 1.11% at 79,468, and the Nifty was up 305 points or 1.27% at 24,297. The broader markets also showed strength, with the BSE Mid-Cap Index and Small Cap Index ending up over by 2% each. In the Sensex Index, 21 out of 30 companies traded in the positive territory. The top gainers today were Adani Ports, 3.42%, Power Grid, 3.29%, and JSW Steel, 2.61%. The major laggards were IndusInd Bank, 2.54%, Titan, 0.32%, and Tech Mahindra, 0.27%. In sectoral indices of the BSE, all 20 sectors logged gains. The major gainers were oil and gas, 3.75%, metals, 3.44%, and energy, 3.32%. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,031 companies, shares of 2,986 companies advanced, 947 declined, and 98 remained unchanged.
और विदेशी मुद्रा बाजार में आज भारतीय रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 83.96 पर बंद हुआ. रुपया एक सीमित दायरे में रहा और 4 पैसे की गिरावट के साथ बंद हुआ. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 0.22% बढ़कर 103.19 पर था. चावला जी, जैसा शेयर बाजार का हाल हम देख रहे हैं, आज 3 दिन के बाद थोड़ी राहत है, तो आपको क्या लगता है, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चीजें हो रही है, जापान से लेकर अमेरिका तक, और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसका जो असर था भारत के शेयर बाजारों पर, वो अब कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और बाजार थोड़ा सा स्थायित्व की ओर आपको लग रहा है कि बढ़ रहे हैं?
जो जिन मुद्दों पर बाजार में काफी उठा हलचल हुई थी या काफी कुछ फ्लक्चुएशन आई थी, वाइल्ड फ्लक्चुएशन जो आई थी, वो मुद्दे अभी बरकरार हैं. तो ऐसा नहीं बोल सकते. जो हमने आज देखा, जो मार्केट चढ़ी है, उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे रिलीफ रैली, एक राहत वाली रैली.
जी,
वो जो मुद्दे हैं एक दिन में खत्म नहीं हुए.
मतलब ये एक गिरावट का दौर अभी इसके बाद.
देखो, गिरावट और चढ़ना मार्केट वो एक नॉर्मल चीज है, लेकिन मैं आपसे जो निवेदन ये कर रहा हूं कि वो जो अपनी जगह पे जो कंसर्न्स थी, जो चिंताएं थी, वो चिंताएं खाली भारत को लेकर नहीं थी, वो एक पूरे विश्व स्तर पर वो चिंताएं हैं, अभी भी हैं. लेकिन आप फिर पूछेंगे फिर स्टेबिलिटी कैसे आ गई? आज तो काफी रिलीफ रैली भी तो क्यों आई? उसके 2-3 कारण. जो ये मेन उठापटक हुई थी वो एक बोलते हैं जापान कैरी ट्रेड, वो क्या रहा था? आपको पता है सालों तक जापान में जो इंटरेस्ट रेट था ऑलमोस्ट जीरो था ही नहीं इंटरेस्ट रेट. तो लोग क्या करते थे, वहां से जो फंड मैनेजर्स है, बड़े बड़े फाइनेंशियल मेजर प्लेयर्स, क्या करते थे, वहां से बोरो किया, भारत में इन्वेस्ट कर दिया, अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिया. तो एक आर्बिट्राज जिसको बोलते हैं, जो डिफरेंस है उसका फायदा उठाते थे. अब जापान में सडनली एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई बहुत हो लिया, अब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे. उससे थोड़ा सा पैनिक हो गया. तो जो मंडे मैनियक हुआ, जो सोमवार के दिन जो काफी गड़बड़ हुई, तो वो एक तरह का पैनिक सिचुएशन थी. और फिर उसी दौरान एक संकेत अमेरिका से आए कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कहीं रिसेशन में तो नहीं जा रही. एक चिंता, बड़ी चिंता जताई गई, तो उस चिंता को मार्केट ने सीरियसली लिया. तो ये कॉम्बिनेशन बन गया. और मिडल ईस्ट में जो हो रहा है वो वैसे ही काफी चिंता का विषय. तो 3 जो फैक्टर्स थे वो उन्होंने मार्केट को एक तरह का पैनिक बटन स्ट्राइक कर दिया. अब क्या हुआ कि जैसे आज जापान के जो बीओजे, बैंक ऑफ जापान के जो डिप्टी चीफ हैं, उन्होंने अब देख लिया भाई तो नुकसान ज्यादा हो गया, तो उन्होंने एक एश्योरेंस दी है ग्लोबल मार्केट्स को कि हम तब तक अब रेट को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती. तो एक तो वहां से रिलीफ मिला. दूसरा, जो अमेरिका को लेकर चिंताएं थी वो एक अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग, तो अब जो है थोड़ी सी ये ना, एक अंग्रेजी बोलते हैं इट फीड्स ऑन इटसेल्फ, नेगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी भी. तो अब लोगों को अच्छी चीजें भी नजर आने लगी. तो एक अच्छी चीज ये नजर आने लगी कि भाई अमेरिका में ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है लेकिन हार्ड लैंडिंग नहीं होगी, शायद सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए. तो खरीदने वाले को तो बहाना चाहिए और बेचने वाले को पैसे वो चाहिए. तो ये है आज की सिचुएशन.
राइट. सो प्रकाश जी, ड्रॉइंग नाउ योर अटेंशन टू द डोमेस्टिक डायनामिक्स. यू नो द सेंसेक्स हैड रियली गॉन अप 81,000 फ्लर्टिंग विद 82,000 एंड पीपल वर सेइंग ओवरहीटेड था. सो डू यू थिंक दैट दिस वाज लाइक अ क्रैश एंड देयर वर ग्लोबल फैक्टर्स और ओवरड्यू करेक्शन?
See, what has happened is there is no doubt, there is almost a consensus of sorts that the Indian market had a good run over the last few years, had a very good run, as a result of which it was a liquidity chasing the stocks. At the end of the day, stocks are limited, but liquidity was so much and especially the liquidity with the domestic institutional investors. And where are they getting money from? They are getting money from the system, like systematic investment plan. The young boys and girls earning well, they are saving in mutual funds. So all this money was being pumped into the stock market. As a result of which, of course, our economy is solid, rock solid, there is no doubt about it, but then the valuations were stretched. And then a reason came to sort of go for correction in the form of global factors, which we did just discussed now. So it was also looking for a kind of a alibi to go for a correction. So the correction has happened.
Right.
And that's why there's no alarm in the market.
Right. So you speak of alarm, and then there was this whole, you know, three-day losing streak. And in fact, in one of the days yesterday, the market did start strong, but then again followed the streak of the previous 2 days. Some assurance from you, you know, because, yes, our investors are getting mature, but still we have a segment of still-to-be-mature investors. You know, they're young investors. They have to see many more cycles, a longer number of years, a larger period. TII liquidity is there, you just said that, and it's linked to domestic these things other than geopolitical factors. Do they panic? Do they sell on a falling market? Do you pick up? You should always have a little liquidity for an occasion like this so that you can pick up in a falling market. How should they hedge the, you know, small portfolios or limited portfolios? What assurance and advice?
You talked about the investors who are relatively new.
Right.
So what has happened is, it's an area where even SEBI and the RBI have raised concern. Even the economic survey has raised concern over what is known as the future and options, derivatives market, or the day trading. So you buy in the morning, sell it, you buy options, calls. It's a little technical, but these young boys and girls are very smart. They thought there's a quick money to be made. So they kind of plunged. So there are, according to official estimates from the regulators and all, about 1 crore futures and option investors, they lost something like 50,000 crore. So the futures and option is a loss-making proposition. If you go to any brokerage account to do trading today, you want to buy a share, you go to your brokerage account,
right,
your DMAT account,
right,
your brokerage. The first warning, SEBI warning is there, that 9 out of 10 trades have resulted in loss. Be careful. Have you got it? Then you say, yes, I got it. So, if my advice to the newcomers, or my advice to young investors would be, just listen to SEBI.
Okay.
You want to invest? It's a beautiful area. I mean, the stock market is one of the most scientific. I mean, there is a risk, but there is a risk in the real estate as well. There is a risk in gold as well. Even the gold sees wild fluctuations. So, the only way is that go for solid, good investments. Don't listen to tips of the stock market here and there on the social media. No. The beauty of it is that today, information about the company is readily available, not on Google, I'm saying. It is available on the BSE, NSE exchanges.
Right.
You click on any company, the entire detail is there. All that you need to do is find out whether the company is making profit or not, whether the company has borrowed heavily or not, whether the interest cost of the company is too much to bear, whether the company is facing any cash problem. And these basic things you do, invest, it might happen that you might have got a little, an expensive share. But say, okay, then wait. You are a young investor, wait. And you will see, if you have invested in a good running company, the companies are doing well, you will make money.
Right. I think, you know, when you said wait, and I think patience is a premium, particularly the younger you are, the less of patience you have. It's something that we build, and I think it's important to build that muscle within you. When we are looking at today, you know, the definition, what according to you would be short-term, medium-term, and long-term? Has that changed?
No, it hasn't changed. See, I'll tell you what. For a person like me, who's a senior citizen, the short term and the long term would be how much? बट अ पर्सन हु इज अ यंग 24 ईयर ओल्ड पर्सन बॉय और अ गर्ल फॉर हिम और हर द लॉन्ग टर्म वुड बी 20 ईयर्स 10 ईयर्स एंड व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन टॉप ब्लू कंपनीज एंड स्टे पुट फॉर 10 ईयर्स After all, what do mutual fund, what are they doing? They are collecting money and then asking, encouraging you to stay on for a long time so that the power of compounding is available to you.
Right.
So the short term and the medium term, the long, on a personal level, depends on the age profile of a person, investor. You know, short term could be 1 month, medium term could be, say, 1 year or 6 months, and long term, it depends. I would rather go for, you know, match it with the age profile of a, then you, because naturally the younger generation has a good staying power.
तो प्रकाश जी, अब आज के समय में जो बाजार जहां पे है, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स अभी बाजार में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किन सेक्टर्स का प्रमुख रूप से उन्हें सुझाव देंगे?
देखिए जी, आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी में सब सेक्टर बढ़िया है
जी.
मैं उन एनालिस्ट में से नहीं हूं, गो फॉर डिफेंस, गो फॉर बैंकिंग, गो फॉर, जब इकोनॉमी हमारी अच्छी ग्रो कर रही है तो सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, तभी तो ग्रो कर रही है ना
जी.
आपको यही चीज का ध्यान देखना है भाई, आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए. अच्छी कंपनी ढूंढना मुश्किल नहीं है, आपके आसपास मिल जाती है. आप बाजार में सौदा लेने जाओ, आपको टॉप कंपनीज को ब्रांड वहां दिखते हैं. आप मेडिकल केयर में जाओ, आपको टॉप कंपनीज वो मिलते हैं. कोई मुश्किल है ढूंढना. आप जिस कंपनियों में काम करते हैं, लोग बाग आईटी कंपनीज में काम करते हैं, 4-6 आईटी कंपनीज टॉप की है ना, आपके सामने किसको नहीं मालूम उनके नाम, उनमें नाम देख लीजिए. आप किसी भी फील्ड में, आप बैंक से 8-10 बैंकों का नाम आप टिप्स पर खींच सकते हैं, टॉप बैंक्स हैं, उनमें से किसी में इन्वेस्ट कर लीजिए. अब देखिए किस उसमें. लेकिन एक चीज मैं आपसे, अपने आपके माध्यम से इन्वेस्टर को बोलना चाहता हूं, मिस्टेक ये होती है कि ये लोग मोमेंटम चेज करते हैं. अब वो हिंदी में आप समझा दीजिए, मोमेंटम चेज करना थोड़ा रिस्की हो जाता है. क्या होता है, एक क्योंकि उसमें ऑपरेटर जॉबर्स जो रोज खेलते हैं वो एक चीज को बिल्ड करते हैं, तो उसमें आप ट्रैप मत होइए. आप ठंडे दिन, आप कोई नहीं रोकता, आपको कोई जल्दी नहीं है. आप अच्छा शेयर थोड़ा महंगे पे ले लीजिए, लेकिन तसल्ली से ले लीजिए. मोमेंटम चेज करके डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट, ऐसा मत कीजिए. आप मार्केट से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते हो, आपको ये ध्यान रखना
जी. और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशियाई शेयर बाजारों के पांचों प्रमुख सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. विश्व के बाजारों में वापसी का असर एशिया के बाजारों पर भी दिखाई दिया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.80%, जापान का निकेई 1.18%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.37% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.09% तक बढ़ा. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में भी 1.58% की तेजी दिखाई दी. यूरोप की तीनों प्रमुख बाजारों में आज अच्छा प्रदर्शन किया. ताजा समाचारों के अनुसार फ्रांस का कैक 1.56%, जर्मनी का डेक्स 1.26% और लंदन का फुटसी 0.99% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे. प्रकाश जी, अब एशिया और यूरोप सभी जगह तेजी दिखाई दी, कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो आपने पहले बताया, जैसे जापान से अच्छी खबर है तो उस राहत का असर ही सारे बाजारों पर दिखाई दे रहा है?
देखिए, दो चीजें होती है मार्केट चलती है, एक होती है फंडामेंटल रीजन, एक होता है टेक्निकल रीजन. फंडामेंटल रीजन मैंने आपको बताया, जैसे कि भाई अमेरिका की इकोनॉमी के लेकर जो चिंताएं हैं वो अभी बरकरार हैं. फंडामेंटल रीजन चेंज नहीं हुए. जापान को लेकर मैंने आपको बताया कि जापान में जो इंटरेस्ट रेट जीरो था वो सिचुएशन अब नहीं रहने वाली, लेकिन फिलहाल थोड़ी एश्योरेंस जापान के बैंक ऑफ जापान ने दी तो थोड़ी राहत वहां से मिली. तीसरी बात, जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है, अभी आप ऑयल की जिक्र करेंगे
जी,
तो उसमें भी क्या हुआ है, जो एक फियर था ना कि बढ़ जाएगी ये, कहीं वार फुल फ्लैज वार तो नहीं हो जाएगी, वो फियर जो, वो जो डर है वो थोड़ा थमने लगा है, कम होने लगा. इतना डर जितना था ना शुरू में
जी,
पिछले 2-3 दिन पहले से था, वो डर को थोड़ा समेट, थोड़ा कम हुआ है. तो ये तो फंडामेंटल रीजन. अब टेक्निकल रीजन क्या होते हैं, ओवर सोल्ड ओवर बॉट हो जाती है. टेक्निकल रोजमर्रा के ट्रेडर होते हैं जो यहां से पैसा एक मार्केट से उठाते हैं दूसरे में ले जाते हैं, तो उस सूरत में ये टेक्निकली थोड़ी ओवरसोल्ड हो गई थी मार्केट में। ऊपर से थोड़ी एश्योरेंस आई, अमेरिका से भी आई, फंडामेंटल एश्योरेंस भी आई कि फिलहाल कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन वो चिंताएं अपनी जगह हैं, उनको वेट एंड वॉच अच्छे से देखना
पड़ेगा। राइट, एंड प्रकाश जी, कीपिंग इन ट्यून विद व्हाट अम्बरीश जस्ट रेड अबाउट द अदर इंटरनेशनल मार्केट्स, क्विक लुक एट द यूएस मार्केट्स। मेजर यूएस मार्केट्स रिबाउंडेड यस्टरडे आफ्टर लॉसेस इन थ्री कंसेक्यूटिव सेशंस। द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फिनिश्ड अप 0.8%। द ब्रॉड बेस्ड S&P 500 गेन्ड 1%, वाइल द टेक रिच नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स also advanced 1%. We move on to our next story. Commerce and Industries Minister Piyush Goyal today urged the Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC countries, for faster negotiations of the Free Trade Agreement, FTA. Delivering the keynote address at the BIMSTEC Business Summit in New Delhi, Mr. Goyal highlighted that despite each member's economic prowess, trade between the BIMSTEC countries remains small. He noted that the member countries and business leaders need to reassess priorities regarding the proposed FTA. The minister called for a BIMSTEC desk in each nation and to focus on partnership in supply chains, e-commerce, digital public infrastructure and food security. Prakashji, so despite, as the minister said, despite all the FTA existing, why is it still low?
Well, there are reasons, some reasons could be political. And in fact, the free trade agreement should be ideal because the advantage of proximity. You are located in each
region.
In the same region. And after all, a free trade agreement largely covers goods, merchandise. So the transportation cost, the supply chain build-up, it's so easy as compared to, say, European countries or far-flung areas or South Asian. I mean, you have Caribbean nations, you have South American. But here, the advantage of proximity should be availed of. So, and because it's just crossing the border and you are in a different market and the market is available for you.
Right.
Why not take advantage of it? So that is what the minister was trying to impress upon, that why don't we speed up this trade? After all, India has several operational free trade agreements, and why not have one with our immediate neighbors?
और चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित ब्याज सहायता योजना जारी रखने के निर्णय को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से फसल ऋण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन सहित संबंधित गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने को कहा है। किसानों को 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक की सीमित राशि दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। समय पर ऋण अदा करने वाले किसानों को ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। प्रकाश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अधिसूचना है भारतीय रिजर्व बैंक की, और केंद्र सरकार की जो पूरी योजना है संशोधित ब्याज सहायता योजना, ये योजना क्या है और इससे किसानों को किस तरह का लाभ होगा, अगर आप ये सरल भाषा में उनको बताएं?
ये बेसिकली आपको कंसेशनल रेट पे लोन मिलता है
जी।
और वो कंसेशनल रेट का जो सबवेंशन है वो भारत सरकार देती है आपको। और ये जो अभी आरबीआई ने कदम उठाया है, बड़ा टाइमली है क्योंकि खरीफ की अभी बिजाई हो रही है और काफी बिजाई हो भी चुकी है, तो हमारा जो सोइंग सीजन चल रहा है खरीफ का, जो समर क्रॉप होती है, तो अब किसान को थोड़ी उसके लिए फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, सीड की जरूरत होती है, थोड़ी एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत होती है, तो उसको पैसा लगाना पड़ता है। तो उस सूरत हाल में अगर उसको थोड़ा लोन का इजी हो जाएगा, सबवेंशन मिल जाएगा, एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, तो ये बड़ा अच्छा एक कदम है और ये इसके नतीजे भी अच्छे मिलते हैं, बिकॉज आपकी खरीफ में उसको किसान को कोई लिमिटेशन नहीं होगी। तो ये इस रूप में इसको आप देखना
जी।
Finance Minister Nirmala Sitharaman today emphasized that the Narendra Modi government's approach to taxation has been to bring in greater simplification of tax laws and procedures and enable growth and employment in the country. Replying to a discussion on the Finance Bill 2024 in the Lok Sabha, the Finance Minister said the government has brought in transformational changes in the tax governance in the last decade. She pointed out that without drastically increasing taxes and minimizing litigation, the government has brought a simplified taxation regime with greater transparency and ease of compliance. Refuting claims of tax burden in the middle class, the finance minister said that in 2023, the slabs for personal income tax were significantly liberalized.
जी, और सरकार ने बताया है कि गरीबी उन्मूलन के कई कदम उठाए जा रहे हैं. लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सांख्यिकी और कार्यक्रम राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 के दौरान लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयामों को ध्यान में रखते हुए गरीबी का अनुमान लगाता है. ये सूचकांक लोगों की गरीबी और उससे मुक्त होने की रफ्तार को मापता है. नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 5,93,00,000, बिहार में 3,77,00,000, मध्यप्रदेश में 2,30,00,000 और राजस्थान में 1,87,00,000 लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है.
We move on to our last headline story. The global oil market has experienced significant volatility due to the complex interplay of geopolitical tensions in West Asia, economic concerns and production disruptions. Oil prices show a sharp decline in the last 7 days, primarily driven by fears of a potential US recession and weak demand from China. However, this downward trend was partially offset by escalating tensions in West Asia following an Israeli attack on Iranian territory. In the global crude market, Brent crude was trading 1.6% higher at $77.70 per barrel. Meanwhile, WTI crude was also up 1.61%, trading at $74.38 per barrel when reports last came in. Prakashji, quickly, where will oil prices be, say, in the next 1 month or so, keeping the geopolitical tensions in mind?
Well, the concerns, the fears that we had on oil prices have not been really come to that extent. And it is, oil prices, crude prices have largely behaved. As long as they remain below $80 okay. per barrel, okay. there is no cause to worry. What has happened is that one day it goes up, then it cannot stay there somehow, because there is a concern that China is slowing down. There is a concern that US might slow down. So when the economies of the world slow down, there is a fear that demand for oil would go down. So that particular fear keeps the oil prices within check. So despite the fact there is a problem in the Middle East and West Asia, the sentiment around, the speculative sentiment around the oil prices is not allowed to go haywire.
जी, और चलते हैं सोना चांदी का हाल भी जान लेते हैं. सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. शाम 6:40 पर भारत में 24 कैरेट सोना 0.39% बढ़कर 69,310 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी 0.23% घटकर 79,710 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
मुझे बहुत प्रसन्नता हुई.
Absolutely, Mr. Prakash Chawla, thank you so much for coming on to our program. And listeners, before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices snap 3-day losing streak today ahead of RBI policy outcome. Commerce and Industries Minister Piyush Goyal calls for faster negotiations of BIMSTEC free trade agreement. RBI extends interest subvention scheme for agricultural loans up to 3 lakh rupees. And crude oil prices rise over 1.5% amid high volatility. And that's it in today's edition. Namaskar.
मार्केट्स अप्रा।